komşum. बुद्धि सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो, जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले। सितारे कितने प्यारे लगते तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। तो पापा कहते हैं सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। वो कौन है? आकाश के सितारे, और हम है धरती के सितारे। उन सितारों और हम सितारों में क्या अंतर है? वो है प्रकृति की सत्ता, ये है परमात्म सत्ता। वो है जड़, ये है चेतन। ये है धरती पर, वो है आकाश में। वो क्या करते और ये क्या करते? वो रात को दिन नहीं बनाते। ये सितारे रात को दिन बनाने वाले सितारे। तो सदा अपने आप को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो, चमकती हुई जो
एक रात को दिन करते सितारे। एक रात को दिन करते सितारे।
कौन? हम।
ये धरती सितारे
नहीं कर सकते। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो। सितारे कितने प्यारे लगते हैं तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारे भी भिन्न भिन्न प्रकार के गाए जाते हैं। कौन से प्रकार है?
सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे
और साधारण सितारे।
उछल तारे,
उछल तारे। एक है साधारण सितारे, दूसरे है लकी सितारे, और तीसरे है सफलता के सितारे। तो आप कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो इसलिए सफलता भी कम मिलती है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो शक्तियां कहां जाएगी? साथ ही होगी ना। और जहां सर्वशक्तियां है वहां सफलता ना हो यह संभव है? तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम है। यह मेहनत करने के बाद सफलता होती है, क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हो। ये सितारे ज्ञान की रोशनी देते हैं, वो सितारे स्थूल रोशनी देते हैं। वो टिमटिमाते सितारे, ये सदा जगमग ज्योति है। सदा सर्वशक्तिमान के आगे, सॉरी मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती रहती है। जैसे सामान्य स्थितवान होने वालों के आगे सम्मान आगे पीछे घूमते रहते, उसी तरह यहाँ बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब आप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं पार्टनर? ये तो अविनाशी साथी है, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? कभी मम्मा ने प्रेम बहन जो है ना तेरा, उसको एक काम दिया था, उसको फोटो का जो एल्बम था उसमें सभी के फोटो लगे हुए थे यज्ञ के, तो उसमें से उन उन लोगों को छांटना था कि जो यज्ञ को छोड़कर चले गए, तो वो निकालने लगे कि जो जो अभी नहीं है, जो पहले थे अब नहीं है, एक एक फोटो निकालने लगे। तो निकालते निकालते उसको संकल्प आया कि इतना प्यारा परिवार, इतना श्रेष्ठ परिवार, ऐसे परिवार को छोड़ के ये लोग कैसे चले गए। तो उसने पूछा मम्मा से कि ऐसा क्यों, कितना श्रेष्ठ परिवार है उसको भी छोड़ के क्यों चले गए। तो मम्मा ने कहा जिनका अपने ऊपर टेंशन कम रहता है या देही अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ कम रहता है, उनको जरूर माया किसी ना किसी तरह से मार करती है और अपने साथ ले जाती है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अशरीरीपन का। अगर वो पुरुषार्थ कम है तो जरूर कहीं ना कहीं से माया आएगी, अलबेला बनाएगी और ले जाएगी साथ में। तो कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं, और ये तो अविनाशी साथी, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। ये साथी कभी भी धोखा नहीं देता, उन साथियों का भरोसा नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना, जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है उतनी खुशी होगी, तो खुशी रहती है, किसी ने कहा बहुत रहती है, ढोल बजते नहीं रहते, ढोल तो बजते पर कभी कभी स्वर कम हो जाता है, ढोल स्वर मध्यम, तो बढ़ती रहती है या कम और ज्यादा होती रहती है। कोई बात आती है तो कम होती है, कम होती है, थोड़ी तो कम होती है, फिर सोचते हैं क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन बात ही ऐसी हो गई ना, कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन आप कौन हो, बात के बाप रचता हो, मास्टर रचता हो, बात तो रचना है। तो रचना, रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है। तो बाबा कह रहे हैं यहां पर तुम सब कौन हो, सफलता के सितारे, परमात्मा सत्ता, रात को दिन करने वाले, रात में चमकने वाले, विश्व को ज्ञान की रोशनी से चमकाने वाले, वो प्रकृति की सत्ता है, वो रात को दिन नहीं करते, वो आकाश में रहते हैं, वो स्थूल है, तुम चैतन्य हो। तो सफलता के सितारे अर्थात सदा सफलता, उसके लिए बाबा ने कहा किसे मिल सकती है, जो जिनके पास, जो तो कंबाइंड रहते हैं, जिनका साथी बाप है और जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तीन मत है, जो सदैव मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे और पीछे घूमती रहती है, उन्हें सफलता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सफलता उनके पास आती है। तो कंबाइंड सदा रहते हो या कभी कभी अलग हो जाते हो, जैसे लौकिक में कोई अच्छा साथी मिलता है तो छोड़ते हैं क्या, तो यह साथी कैसा है, अविनाशी है, यह साथी कैसा है, सदा साथ देने वाला है, यह साथी कैसा है, निस्वार्थ, यह साथी कैसा है, सर्वशक्ति है, उसमें समाई है, संपन्न है, भरपूर है, तो कभी धोखा देने वाला नहीं है, वो साथियों का कोई भरोसा नहीं है। आज प्यार करेंगे और धोखा भी देते हैं, ऐसे लगेगा कि इनसे ज्यादा हमें प्यार कोई करता ही नहीं, और कल छू मंतर प्यार, अल्पकाल का प्यार है।
मझदार
छोड़कर चले जाएंगे। सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। ये नशा और खुशी है। जितना नशा होगा कि स्वयं भगवान मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी। कोई हो ना हो संसार में, सबने छोड़ दिया परंतु वो कभी नहीं छोड़ेगा, तो खुशी रहती है, बढ़ती रहती है या कम और ज्यादा होती रहती है। कोई बात आती है तो कम होती है, थोड़ी तो कम होती है, फिर सोचते हैं क्या क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन बात ही ऐसी हो गई, कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन मास्टर रचता हो और बात रचना है, तो रचता बड़ा होता है और रचना बड़ी होती है। क्या बाबा पूछ रहे हैं, कभी कोई बात से घबराने वाले तो नहीं हो? वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं, देखना वहां जाएंगे तो माया आएगी, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था, ऐसे भी हो सकता है। नए नए रूप से आएगी, पुराने रूप से नहीं आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी, फिर भी बहादुर हो, निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे, निश्चय की विजय है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। बाबा यहाँ भय की बात कर रहा है कि कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो? डर, दो प्रकार के डर है, एक है बाहर का डर, एक है अंदर का डर। कोई छुरा लेके खड़ा हो जाए वो है बाहर का डर, जिससे आत्मा भयभीत होती है, पर उससे भी खतरनाक एक दूसरा डर है। यहां कारण है, कुछ डर ऐसे अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वो अधिक खतरनाक है, वो और गहरे में है, जो है नहीं परंतु वो मन में है। ऐसे भय है, बहुत सारे भय, ऐसे भय है कि जो आत्मा को गिरा देते हैं। या बाबा बातों की बात कर रहे कि माया जो है नए नए रूप में आएंगी, पुराने रूप में नहीं आएंगी, जिसका हमें अभ्यास है वो रूप में नहीं आएगी, जिनका अभ्यास बिल्कुल नहीं है वो रूप में आएगी, फिर भी बहादुर हो। बाबा कह रहे निश्चय है कि अनेक बार बने, अब भी और आगे भी बनते रहेंगे, निश्चय की विजय है ये। तो विजय का आधार निश्चय, विजय का आधार मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान, विजय का आधार कंबाइंड, विजय का आधार
अनेक बार,
सदा साथ है, वो साथ ही है सदा का। ये सारी बातें अगर साथ में है तो विजय है। पांडवों की विजय क्यों हुई? क्योंकि धर्म उनके साथ था, और धर्म कहाँ था? जहां भगवान है वहां धर्म है, तो धर्म की सदैव विजय है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात में घबराने वाले तो नहीं हो। मनुष्य भयभीत होता है बहुत सारी बातों से, जो बातें ऊपर से नहीं दिखती है परंतु एक सबकॉन्शियस माइंड में भय होता है, जैसे मेरी बदनामी तो ना हो जाए, कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो नहीं, ये एक अंदरूनी भय है, भयभीत रहता है वो, उसको लगता है कहीं ये तो ना हो जाए, हुआ नहीं है परंतु कल्पना करता है कि ये तो ना हो जाए, ये तो ना हो जाए, ऐसे तो नहीं हो जाए, ऐसे अगर हो गया तो क्या होगा, सबने अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, बहुत जिसको जिससे जिसकी जिससे मृत्यु होती है उसको उस चीज से भय होता है। जिसकी अगर पानी से मृत्यु हुई हो तो बचपन से पानी का भय होता है, कोई बहुत बड़ी खाई से नीचे गिरकर अगर मृत्यु हुई है तो उसको ऊंचाई से भय होता है। हर व्यक्ति के मन में परंतु ये भय समाया हुआ रहता है। एक व्यक्ति था जिसको किसी ज्योतिष ने कह दिया, जिसका ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास था, उसको उसने कहा कि एक साल के बाद इस तारीख को इतने बजे तुम्हारी मृत्यु है। ये खेल सबकॉन्शियस माइंड का है, उसने उसे स्वीकार कर लिया अंतर्मन ने, और उसने अपनी तैयारियां चालू कर दी, मृत्यु हुई तो क्या हुआ, इंश्योरेंस कर दिया है, सब प्रॉपर्टी स्टेट सारा। और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती गई उसका मन जैसे तैयार होने लगा उस चीज के लिए, और जैसे ही वो दिन आया और वो तारीख आई, उसकी मृत्यु हो गई, कोई बीमारी नहीं थी। पर वो दिन रात वो बात उसके अंतर मन में समा गई। और एक बताते, जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक सराय, सराय मतलब होटल, मोटेल क्या कहते हैं उसका, हाँ उस तरह का इन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहां एक रात रुका, वो भोजन किया, सुबह सुबह जाकर निकल गया वहां से, एक रात ही रुका वहां पर। एक साल के बाद वापस आया वहां पर उस होटल में या धर्मशाला में, रैन बसेरा इन जिसको कहते हैं। तो वहां का जो मालिक था वो कहता है, आप जिंदा हो? बोलता, क्यों, आप एक साल पहले यहाँ आए थे ना? बोलता, हाँ मैं तो आया था। एक साल पहले आपने जो यहाँ भोजन खाया था उसमें सांप गिर गया था, पूरा जिंदा सांप। और जितने चार लोगों ने, पांच लोगों ने खाया था, जो चार लोग जो दूसरे थे वो तो तुरंत मर गए, और आप अब तक जिंदा हो? इतना सुना और गिर गया। और उसने कहा, अरे सुनो, वो तो एक साल हो गया, अभी एक साल कहा, वो तो गया। तो किसने मारा उसे? डर। कौन मारता है? डर ही मार देता है व्यक्ति को, इतना वो अंदर, उसका कोई संबंध ही नहीं है अभी एक साल का। वो तो अच्छा था, उसे कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सुबह सुबह निकल गए थे, बाकी वो चार तो गए, ये अब गया। तो डर ऐसी चीज है कि एक पुरुषार्थ ये है कि हमें अपने डर को ढूंढना है कि मेरे अंतर मन में कहां कहां डर समाया हुआ है, किस किस चीज से हम भयभीत होते हैं। कोई चलो आतंकवादी बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो शायद ब्राह्मण नहीं घबराएंगे, वो तो पता है वहां पे याद करेंगे, आत्मा हमारा हमारा अविनाशी है, ये वो सब वहां पे भी भूल सकते हैं। परंतु उससे भी बड़े जो भय है वो कुछ और है भय, वहां पर भी वो जो बाहर का भय है वो भी, वो कोई छुरा लेके खड़ा है, वो छुरे की वजह से भय नहीं है, भय तो पहले से है, वो तो उस समय केवल प्रकट हो रहा है, वो खाली प्रकट हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, वो भय तो अंदर ही समाया हुआ है, हमें पता ही नहीं वो भय है। परंतु हर आत्मा एक भय के साथ जीती है, मृत्यु का भय होता है हर एक को, इस देह से इतना लगाव है कि इस देह को छोड़ना नहीं चाहती आत्मा, बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि आत्मा इस देह से सब कुछ भोगती है, तो उसको उस देह से बहुत लगाव होता है। इसके लिए कहा गया दो प्रकार की गति है, एक एक भोगी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वो ऐसा कहते हैं कि कौन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितना समय के बाद दूसरा शरीर लेती है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, ज्यादा समय किस आत्मा को लगता है नया शरीर लेने के लिए, किसको लगता है? बराबर, दो तीन प्रकार की आत्मा, एक है उत्कृष्ट आत्मा है, एक है मध्यम आत्मा, एक है निकृष्ट आत्मा है। जो निकृष्ट आत्मा है और जो उच्चतम आत्मा है उनको शरीर लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको अपने लेवल का गर्भ ढूंढना होता है। जो निकृष्ट लेवल की आत्मा है उन्हें भी तुरंत गर्भ नहीं मिलता है, उनको ऐसा गर्भ चाहिए माँ बाप का, ऐसे माँ बाप चाहिए कि जो बड़े जन्म जन्म से बहुत पापों का बोझ है वहां पर, तो वैसा उसे ढूंढना पड़ेगा। और जो महान आत्माएं हैं उन्हें भी ऐसा ही माँ बाप का गर्भ ढूंढना पड़ेगा, हजारों माँ बाप और हजारों गर्भ उसको दिखते हैं मृत्यु के समय, वो वहां से चुनाव करती है, चयन करती है कहां जाऊं, तो ऐसे घर पे वो जाती है। क्या फिक्स होता है? अगर हिटलर की आत्मा जो है अभी, हिटलर की आत्मा वो आत्मा है कि जिसने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार दिया, ऐसी 1 करोड़ लगभग, अभी ऐसी आत्मा जब जन्म ले रही होगी तब उसे बहुत बड़ा चुनाव करना पड़ेगा, किसके घर जाऊं। ऐसे साधारण आत्माओं के माँ बाप के घर नहीं जाएगी वो, ऐसी आत्मा है कि जिनके जन्म जन्म के बहुत सारे पाप है वही हो जाएगी, और वहीं से वो जिंदा होगी, वहीं से उसका जन्म होगा। पर और क्योंकि उसने सबको पीछे छोड़ दिया, वो चंगेज खान जो भारत में आया, या मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी, सबको पीछे छोड़ दिया, ऐसी तरकीब निकाली लोगों को मारने की, एक चैम्बर में 5,000 लोगों को रखो, बटन दबाया और खलास, कुछ भी नहीं, रक्त की एक बूंद भी नहीं, हवा सीधा वेपर। तो इतने लोगों को उसने मारा। तो ये कोई ऐसी जो आत्मा है उसको टाइम लगता है, वैसे ही जो महान आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठतम आत्माएं हैं, उनको ऐसे माँ बाप ढूंढने पड़ेंगे कि जो बहुत पुण्यवान है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ये है, तो इसमें में भय की जो बात है, तो ऐसी जो आत्माएं हैं मतलब, और जो बीच वाली जो आत्माएं हैं उनको वो मतलब उनको बहुत इजीली अवेलेबल है कई सारे उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो निकृष्ट है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, जो श्रेष्ठतम है उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा अपने लेवल की माँ बाप देखने के लिए, थोड़ा सा लेट फिर वो कितना वो पता नहीं। जैसे ये कहा जाता है कि आत्मा प्रवेश कर जाती है, प्रेत आत्मा है, किसमें प्रवेश करती है, हाँ ये पॉइंट था बताने के लिए कि ये जो आत्मा शरीर छोड़ती है फिर भटकती रहती है, तो क्या ये आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर सकती है? उत्तर क्या है? हाँ, हम कहते हैं ना आत्मा प्रवेश करती है। अभी ये आत्मा किस में प्रवेश करती है, प्रश्न ये है। अगर ये एक भोगी की आत्मा है, अगर ये भोगी की आत्मा है कि जिसने शरीर से बहुत कुछ भोगा है, तो जैसे शरीर छोड़ती है अस्वस्थ हो जाती है, उसे शरीर चाहिए और शरीर मिल नहीं रहा है जल्दी, तो वो बीच में प्रवेश कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे, जैसे कोई आत्मा है जो खान पान में लिप्त है, उसे बहुत खान पान पसंद है, और वो जैसे शरीर छोड़ती है फिर उसको कहां से मिलता है, तो वो शरीर ढूंढती है कि उसमें प्रवेश करे और फिर भोग भोगे। तो किस आत्मा में प्रवेश करेगी वो? जो आत्मा भयभीत है ऐसी शरीरों में वो प्रवेश करती है, ऐसे शरीर में कि जहां आत्मा शरीर की मालिक नहीं है, जो भय से पूरित है, जो जिन आत्माओं में भयभीत है, कमजोर आत्माएं जो है उनमें ये आत्माएं प्रवेश करती है। किस लिए प्रवेश करती है? अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं शरीर से संबंधित होती है। अभी कुछ आत्माएं ऐसी है जो महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, जैसे कोई दार्शनिक है, चलो ज्ञान में है या नहीं है, परंतु जिसका चिंतन, जिसका आनंद विचारों में है, कोई कवि है जिसका आनंद शरीर में कम है, वो शरीर से जैसे बाहर निकलती है उसे आनंदित हो जाती हो। जो भोगी आत्मा है जैसे शरीर से बाहर निकलती है वो तड़पने लगती है, क्योंकि उसके भोग खत्म हो गए अभी, इसके लिए वो नई आत्मा ढूंढती है, नया शरीर ढूंढती है कि जिसमें वो प्रवेश करे। परंतु जो दार्शनिक है, जो योगी है, जो तपस्वी है, जिनका पहले से ये पुरुषार्थ चालू है कि इस देह से हम उपराम रहे, जैसे आज वरदान ने कहा ना, इस अपने आप को यहाँ का समझो ही नहीं, ऊपर परमधाम मेहमान, ये धरती आप, ये हमारा निवास स्थान है ही नहीं, जिनका ये पुरुषार्थ चालू है वो आत्मा है, जैसे ही शरीर छोड़ती है प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है, उनको खुशी होती है, उनको इच्छा नहीं होती है कि मैं किसी में प्रवेश करूं। पर क्या यह संभव है कि कोई महान आत्मा शरीर छोड़े वो भी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है? कर सकती
है?
हाँ, बहुत कम, बहुत कम, इतना नहीं जितना वो करती है, बहुत कम, क्योंकि ये शरीर नया शरीर ले लेती है। परंतु ऐसी महान आत्माएं भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है, किस लिए? कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, जैसे बाबा स्वयं के लिए कहता है ना, कोई बच्चा बुद्धू है तो मैं प्रवेश कर देता हूं और समझा देता हूं। वैसे ही समझो किसी मकान में आग लगी है, एक बच्चा अंदर है, सब भयभीत है, पूरा मकान घिरा हुआ है आग से, और उसके आजू बाजू कई लोग है, एक व्यक्ति को न जाने क्या संकल्प आता है और सीधा कूद पड़ता है आग में, और आग को भी बुझा दे और बच्चे को भी लेके आ जाए, बाद में उससे पूछते भाई तुम कैसे किया, बोलते मुझे ही पता नहीं मैंने कैसे किया, मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहां कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो कार्य कर देती है उसके द्वारा। तो अच्छी आत्माएं जो होती है वो भी प्रवेश कर जाती है, और जो भोगी और विलासी आत्मा है वो भयभीत शरीरों में प्रवेश करती है। इसके लिए भय से बहुत खतरे है, भयभीत रहने का ये एक सबसे बड़ा खतरा है कि कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। किस लिए?
तो बहुत आएंगे,
ऐसे बाबा ने कहा 20-20 10-10 आत्माएं प्रवेश कर जाएगी किन पे पर, जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है, जो शक्तिशाली स्वमान में है जिनका पहले से ही अशरीर होने का अभ्यास है वहां किसी और आत्मा की हिम्मत नहीं उस शरीर में प्रवेश करने की, जो अपनी देह के मालिक है उनमें आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती, जो भूत प्रेत आत्मा है उनमें प्रवेश करती है जो अपने देह के मालिक नहीं है, जो परवश है, जो विवश है, माया के अधीन है, विकारों के अधीन है, ऐसी कमजोर आत्माएं जो होती है वहां प्रवेश करती है, परंतु जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है वहां यह सब नहीं हो सकता।
नेपाल की कन्या आई थी छोटी सी ट्रेन से, तो उसके अंदर आत्मा थी, तो उसमें कुछ उसके अंदर क्यों आती है, बोले अमृत वाली उठती नहीं है
वही मतलब सारा वहीं पे आ गए हम, अगर हम भयभीत रहते हो उसे खतरे कितने सारे हैं, वो खतरे तो पता ही है हमको जो दृश्यमान खतरे है, ये कुछ और प्रकार के अदृश्य खतरे है कि कोई आत्मा घुस जाए और वो हमारे द्वारा वो सब करने लगे, वो जो उसकी इच्छाएं थी जो अपूर्ण रही उस शरीर में, अचानक शरीर छोड़ दिया, अब उसकी कितनी सारी इच्छाएं थी, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं,
बाबा को गीत बजाओ, उसमें गीत याद आया था उधर
तो सभी एवर रेडी हो गए हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है, कल विनाश हो जाए तो तैयार हो, एवर रेडी की बात बाबा बार बार कहते हैं, तैयार रहना है सच कि सोचेंगे अभी ये करना है, करना था, एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो, संपूर्ण बनना है किसी ने कहा, तो एवर रेडी कैसे हुए, बनना है तो देरी है ना, ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएगा, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास, अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे, इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो, समय पर नहीं हो सकता है, बहुत लंबा समय का अभ्यास चाहिए, तुरंत शरीर एक सेकेंड में हो जाना, शरीर और देह से डिटैच हो जाना, ये पुरुषार्थ है। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए, दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने ही उतना ही चढ़ा दिया, दुनिया वालों ने ठोकर और बाप ने आकर ठाकुर बना दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है, अच्छे अच्छे पांडवों को कभी दुख की लहर आती है, अच्छा पांडवों को कभी दुख की लहर आती है, बिजनेस में नौकरी में नुकसान हो जाए, दिवाला निकल जाए, तो इतने पक्के हो, क्योंकि निश्चय है अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप क्या खिलाएगा, दाल रोटी खिलाते देगा बाप, क्योंकि अगर निश्चय है अगर बाप के सच्चे बच्चे हैं तो बाप दाल रोटी जरूर खिलाएगा, पर ब्राह्मण संतुष्ट होगी दाल रोटी से, जिनको अचार और तड़का और तंदूरी और वो सब खाने की आदत है, बाबा को कहेंगे बाबा दाल रोटी तो ठीक है पर बाकी का क्या, बाबा ने कह दिया इधर मैं दाल रोटी तो दूंगा पर संतुष्ट भी तो होना चाहिए उससे, नहीं परंतु आदत अगर है अच्छा अच्छा माल खाने की तो दाल रोटी तो फीकी लगेगी उस समय, तो अभी से क्या करना है फिर एक दिन सब कुछ मिलेगा एक दिन कुछ नहीं मिलेगा, उसमें भी संतुष्ट रहना ये पुरुषार्थ है, सब कुछ मिल रहा है वो तो अच्छा है, परंतु वो भोग को भोगते भोगते ही भोग की आदत लग जाती है, कल की मुरली में था छोटे बच्चों के लिए बाबा ने कहा आदत अगर छोटेपन में जो आदत पड़ गई वो पक्की हो जाती है बाद में, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अच्छा ही अच्छा आ रहा है, आ रहा ही है आ रहा, तो हम कह रहे हैं हम तो अना सकते हैं जो आ रहा है वो खा रहे पर अच्छा ही आ रहा है ये भूल रहे हैं, और उसकी आदत अंदर ही अंदर बन रही है, और वो जब नहीं होगा तब पता चलेगा, तब कहेंगे अरे अभी क्या, क्योंकि वो जो बात रिपीटेड हो रही है उसकी सूक्ष्म में आदत बनती जा रही है, हमको वो दृश्यमान नहीं है वो दिख नहीं रही है इतनी अदृश्य है वो, जब वो नहीं होगा तब महसूसता होती है, जब समय जो सुबह अगर जो नाश्ता मिला वही दोपहर में भोजन के रूप में वही मिल जाए तो एक दिन ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, सब स्थिर रहेंगे, जो सुबह पोहा था बस दोपहर में भोजन करने गए बस पोहा ही है सामने, तो चिमन भाई ब्राह्मणों की स्थिति कैसी रहेगी, अच्छा लगे अच्छा चलो दोपहर में हुआ, शाम को भोजन करने के वापस वो हुई, वही सुबह वाला
तो खा लेंगे ना।
बहुत बढ़िया, फिर तो पास है आप। कोई संकल्प ना चले, जो मिला उसमें नमक ही नहीं है, गए और ढूंढ रहे कहाँ दूसरा तो नहीं है, दो प्रकार वाला बस एक ही दिख रहा है, दूसरा बनाया नहीं है, बस एक ही है। नमक पूछा तो नमक है ही नहीं, चुपचाप खा लेंगे या संकल्प चलेंगे। वाह वाह करते, क्या भोजन है, वाह बहुत बढ़िया। तो बाबा दाल रोटी खिलाते रहेंगे, ज्यादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना, रोटी नहीं तो चावल भी मिल जाएगा। और तो आलो का प्रबंध हो गया, मतलब चावल मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना,
सिंधी वाले पापड़
बहुत ज्यादा, जिनकी आसक्ति है भोजन में बहुत ज्यादा, वो कभी योगी नहीं बन सकते, वो कभी आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। देही अभिमानी अर्थात सबसे बड़ा आकर्षण तो आत्मा को इस भोजन का ही है ना।
अच्छा,
सब कुछ चटपटा खटपटा, वो जब तक नहीं आता मजा नहीं आता। अगर गए और कुछ ऐसा दिखा तो मूड ऑफ हो जाता है कई आत्माओं का, भोजन को देखते ही ऐसे लगता है कुछ और बनाया, अभी उदासी अच्छा आ जाती है एकदम। सारी खुशी न जाने कहां चली जाती है। इतना पक्का निश्चय, बस ऐसे ही निश्चय में अचल अखंड अटल उड़ते रहो। निश्चय की बात कह रहे बाबा, इतना निश्चय होना चाहिए बाप में कि बाप खिलाए, जैसे मम्मा के लिए दिखाया था कि लच्छू दादी जो थी, एक बार उसने क्या किया, कागज में चिड़िया के दो अंडे, चिड़िया ने अंडे दिए छोटे छोटे से, तो एक कागज लिया उसमें वो दो अंडे जमा किए और बाबा के पास लेके आए हिस्ट्री हॉल में, बाबा को दिखाया, बाबा ये देखो चिड़िया ने अंडे दिए छोटे छोटे। बाबा ने कहा अच्छा, मम्मा को बुलाओ। मम्मा को बुलाया, मम्मा आज बाबा तुम्हें अपने हाथ से चिड़िया के अंडे खिलाएंगे, मुंह खोलो। तो मम्मा ने आ किया, बाबा ऐसे डाल रही थे तो बाबा ने कहा बच्ची पास है। वो बात की बात है, वो तो इमीडिएट पेपर आ गया ना, पता थोड़ी था क्या करने वाले है, क्यों बुलाया, जब सडनली कोई बुलाए वो तो बात की बात है। अगर हमको पता है कि हाँ भाई ये अंडे वहां है, बाबा ऐसे कर सकता है, मैं जरूर आ करूंगी, ये सोच के थोड़ी गए थे।
भगवान ने दृष्टि दिया, पाउंड
हो जाएगा। वो तुरंत आना चाहिए वहां पे, वो तो पहले प्रिपरेशन है। बॉस जब बुलाता है केबिन में तो थोड़ा ये रहता है ना, अचानक फोन आ जाए कि तुमको बुलाया है तो पता नहीं क्या, किसने बोल तो नहीं दिया, बहुत सारी बातें होती है। जब ऊपर से फोन आता है तो किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, इसके लिए बुलाया। तुरंत नहीं, उन्हें निश्चय उस समय
वो बाबा
जो भी था, वो तो प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, चाहे वो कितनी भी महान आत्मा है पर अगर हमारे सामने वो गलती करती है तो हम उसको भी करेक्ट करने लगते हैं। जैसे और किसी ने उदाहरण दिया है, बाबा एक बार, ब्रह्मा बाबा एक बार शायद किसका कौन से बहन क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे टेबल लगा रहे थे, पलंग थे बहुत सारे, एक छोटा पलंग एक बड़ा पलंग, तो बाबा ने कहा कि ये जो छोटा पलंग है इसके अंदर डाल दो। तो वो बहन ने कहा अरे ये पलंग इसमें थोड़ी जाएगा बाबा। तो डाला फिर भी तो गया ही, तो निकालना पड़ा, तो उसको बड़ी खुशी, देखा बाबा को पता नहीं, मतलब आदर है सम्मान है सब कुछ है, परंतु ये जो बात है, तो ये बात उसने फिर मम्मा को जब बताई तो मम्मा ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत सालीन बुद्धि है कि तुम निर्णय कर सकती हो कि वो उसमें नहीं जाएगा, परंतु फिर भी क्योंकि वो बाबा है। और एक होता है उसने जो भी कहा उसको मानना, फिर अगर वो नहीं जाता तो बाबा खुद ही कहेंगे कि नहीं जा रहा है निकाल दो, تو یہاں حاجی کے پارٹ کی بات ہے.
ہاں
مطلب بابا نے جو بھی کہا اس کو حاجی کرنا, کیونکہ وہ سمپورن ہے, اس میں ہی نشچے کی پریکشا ہوتی ہے. وہاں پر اپنی بدھی وہ پتا ہے شاید نہیں ہوگا. تو یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ نشچے, چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ویکتی ہے ہم اس کو بہت آدر کرتے, پرنتو جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تو ہمارا اگر وہ بار بار ہی غلطی کر رہا ہے تو ہم اپنی بدھی تو چلاتے ہیں وہاں پر, پھر ہم سوچتے ہیں ایسا نہیں ویسا ایسا نہیں ویسا. وہاں نشچے گڈم ہوتا ہے, سمپورن نشچے ارتھ ہے سمپورن نشچے, اس میں کچھ نہیں چاچ ہو کچھ نہیں, جو کہا وہ ستیہ ہے, جو جو اس نے کہا وہی ستیہ, اس کے علاوہ جو بھی سنسار میں سب اسطیہ, یہ نشچے. تو بابا کہتے ایسا ہی نشچے کیسا ہو, اٹل اکھنڈ, کبھی کھنڈت نہ ہونے والا, اکشنیہ اٹل پڑتے رہو. اچھا اوم شکتی. بیچ کا کیا مارتا